ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज श्री शिव गीता स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्रेजेंटेड बाय श्री रजनीकांत चांदवडकर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
शिव गीता अध्याय 5। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल की समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली की समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं तब तक त्रिपुर घाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चट का पक्षी के पंखों की समान दिखे। सुमेरु मंदार मंदराचल विंध्याचलादि पर्वत सात समुद्र चंद्र सूर्य आदि सब ग्रह पांच महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता वन बड़े सर्प 14 भुवन इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के दशावतार और उनके कर्तव्य और कंसवध रावणवध आदि यह भी सब देखा। युद्ध में देवताओं की पराजय शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था तथापि भयभीत हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होइए और संसार के भय से मुझे अनाथ की और संसार के भय से मुझे अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्षादि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य तुम में ही स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब तुम में ही स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा इंद्र एकादश रुद्र मरुदगण गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध गंगादि नदी सागर यह सब हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। हे चंद्रमौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। वह भ्रांति वैसे नहीं है। यह जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता, जैसे शुक्ति में रजत की भ्रांति हुई परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है। तैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता, इसी से लोक इसको शुक्ति का रजवत भ्रम मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता, जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुखमात्र में यह सब जगत दिखता है। यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वह वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता, यानी यथार्थ ही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद रूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ इष्टापूर्त दान अध्ययनादि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो, यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है। परंतु महापुण्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है, तब तुम क्या कर्मों का फल देते हो? अर्थात नहीं देते, तब कर्मकांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि जो अमूर्त परिमाण रहित और अनंत है उसको भोग की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेल पत्र वा चुल्लू भर जल से प्रीति से आपको देते हैं, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो, यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम ही एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो, इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापी आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतकरण में अनेक रूप से विराजित हो। संसार की उत्पत्ति पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है, केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब की समान अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पूरमथन, सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं। हे भगवन, सच्चिदानंद रूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ काल स्वरूप भक्त जनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपके वास्ते नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परम शिव जी से बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, यह अपना विश्वरूप आप, यह आपका विश्वरूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देख कर मुझे प्रतीति हुई। श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवतादिको को गुप्त किया, अर्थात विश्वरूप छिपा लिया। आंख खोल फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा। जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए, सर्प के कंकण पहने, नाग का यज्ञोपवित धारे, व्याघ्र चर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली की समान पीली जटा धारे, मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों को अभय देने वाले, चार भुजा शत्रुनाशक परश धारण किए मृग हाथ में लिए सब जगत के प्रति सब जगत के पति शिवजी को उन्हें शिवजी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी स्थित हुए। तब शिवजी रामचंद्र जी से बोले, जो जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह तुम सब पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे विश्वरूप दर्शनम नाम सप्तमोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय आठवा। श्री रामचंद्र बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे चार इसमें मिले हुए हैं, अर्थात सहकारी है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज यह पांच भौतिक देह के चार भेद है और मानसिक उत्पत्ति जो कहा जाती है वह पांचवी है, उसे दैव सर्ग कहते हैं। उन चारों में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है और शुक्र शोनित की समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है। उसमें विषम दिन पांचवे सातवे नवमे दिनों में स्त्री और युग्म दिनों में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। ऋतु में स्नान करके जो स्त्री कामातूर हो, जिस पुरुष का मुख देखती है उसी आकृति का गर्भ होता है, इसी कारण से स्त्री उन दिन स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक्र और शोनित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं, मशक आदि स्वेदज कहलाते हैं, वृक्ष गुल्मादि उद्वीज कहलाते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहा जाते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोनित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में उसकी बुद्बुद की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जेरसी होती है। इस कारण उसमें देह दही की समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिन में उसकी पेशी यानी मांसपिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोनित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है। दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। तृतीय मास में शीर हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस कारण दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले श्मश्रु तथा दंतादि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं। पुरुषों के गंभीरता स्थिरादि धर्म और स्त्रियों के चंचलतादि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की यह इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इसी से गर्भवती स्त्री को दोहदवती अर्थात दो हृदय वाली कहते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता बुद्धिहीनता व्यंगतादि दोष हो जाते हैं और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त वह पुरुष होता है। इसीलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करे। पांचवे महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। छठे महीने में अस्थि स्नायु और नख मस्तक के केश तथा शरीर के लोभ प्रकट होते हैं। सातवें मास में बल शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोनी धर हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। उस समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है, तब बड़ा दुखी होता है और हा कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए दुखी होता है, अपने आत्मा को शोचता है। वह असह्य और मर्म भेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसी को डाल दो उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख यह है, प्रथम गर्भवास की अग्नि से यानी जो जठराग्नि कहलाती है संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो विदित होता है कि इनमें मुख कुट शालमली के काटे की समान तीक्ष्ण है और यह मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है उससे कुंभिपाक नरक का दुख कम है। मवाद रक्त कफ अमंगल पदार्थ ही पान करने और वांति भक्षण करने को मिलती है। अशुचि पदार्थ मल मूत्र आदि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। जो दुख गर्भाशय में सोकर मैंने पाया है यह दुख संपूर्ण नरकों में भी पड़कर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता यही अभ्यास करता रहता है। आठवें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज इंद्रिय शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने हारे तथा धातु परिणाम से होने हारे हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारण है वह प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है, कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुत नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर नौवें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्तवाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है, उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यथित होते हैं, तब यह प्रथम कुक्षी से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख कर जैसे ही योनि चक्र से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड की समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते बिलाव तथा ढाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय यह ज्ञान शून्य ही पिता की ही समान राक्षसों को भी जानता है। पीने को दुग्ध जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि बाल अवस्था भी महाकष्टकारक है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता। इसी कारण से यह गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के ज्वर से विभ्वल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है, कभी अपना पराक्रम कहने लगता है, कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता है, कभी शांत प्राणियों को उद्वेजित करता, कभी काम क्रोध से मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। अस्थि मांस और नाड़ी इनके सिवाय स्त्री के मनमत स्थान में और क्या है, जिसमें कि मेंढक के फाड़े हुए पेट की समान दुर्गंधी आती है। परंतु तथापि उसमें आसक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। अस्थि मांस शिरा और त्वचा इसके सिवा स्त्री के शरीर में और क्या है, जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक समय प्राण पवन निर्गत हो जाने से भी मृग के से नेत्र वाली का यह देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं। इस प्रकार युवावस्था में दुख भोगने उपरांत वृद्धावस्था का दुख प्रारंभ होता है। तब यह महानिरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। इसका हृदय कब से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु तिक्त कषाय औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है, कटी गर्दन हाथ जंघा चरण यह निर्बल हो जाते हैं। तब सहस्त्रों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं, बंधु तिरस्कार करते हैं। तब यह पवित्रता रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नखशिका पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है, तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शय्या श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दारिद्रादि पीड़ा रोगादि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो उसको कुछ न गिनकर एक मरण के भय से सब ही भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हाँ प्रिय, हाँ धन, हाँ पुत्रो, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है वह मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। यमदूतों की दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से काल पाश में बंधों का कोई रक्षक नहीं होता। तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता और जब भार्या पुत्रादि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। तब इस जीव को लोह निर्मित काल पाश से यमदूत खींचते हैं। एक ओर से बंधुओं का स्नेह खींचता है तब यह कुछ नहीं कर सकता, तटस्थ रूप से देखता है। हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालु के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए को कोई आश्रय नहीं होता। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ यमदूतों से घिरा काल फांसी में बंधा महादुखी हो मैं कहां जाऊं, इस प्रकार से वह जीव विचार करता है। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग दूं, इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहां से जाकर जिन जिन यम यातनाओं का दुख भोगता है उन्हें कहने को कौन समर्थ है। जिस शरीर को केशर कस्तूरी चंदन कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र न रख कर घर से निकालने लगते हैं। तब यह शरीर काष्ठ से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है अथवा श्रृगाल गुरुद्र कुत्ते कौवें इसको खा जाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्म तक कभी दृष्टिगोचर नहीं होता है। जादूगर के समान उत्पन्न जादू सरी के इस जगत में मेरी माता मेरा पिता मेरे गुरुजन मेरे स्वजन ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है। जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छकाया कोई वृक्ष आ जाता है, छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसी ही यह मृत्युलोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातः काल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलषित देशों में चले जाते हैं, इसी प्रकार से जाति अजाति के पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंबादि में जन्म लेकर स्थित होते हैं, कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इसी से मनुष्य को उचित है कि प्राणियों के समागम को पथिक समाज के समान जाने। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा। यह प्राणी इस प्रकार घटी यंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होता है, यही महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है, इस कारण मेरा भजन करना योग्य है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे विश्वरूपदर्शनं नाम अष्टमोऽध्यायः।